भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 32। अगस्त्य प्रागदुहितरम् उपये मे धृतव्रताम् यस्यां तृणच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनी। अगस्त्यतः प्रागदुहितरम् उपये मे धृतव्रताम् यस्यां तृणच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः। अगस्त्यः प्रागदुहितरम् उपये मे धृतव्रताम् यस्यां तृणच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः। अगस्त मुनि ने प्राक पहली दुहितरम कन्या को उपये में विवाह दिया। धृतव्रताम व्रत धारण किए। यस्याम जिससे दृणच्युतः दृणच्युत नामक जातः उत्पन्न हुआ। इद्मवाह नामक आत्मजः पुत्र मुनिः मुनि। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृणच्युत था, जिससे इद्मवाह नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। अगस्त्य सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह सेवा में लग जाता है। भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलध्वज की पहली पुत्री है और जैसा कि पहले बताया जा चुका है उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थीं। अस्तेक्षण कोई किसी देवता की भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो केवल भगवान विष्णु की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। भगवान को निराकार मानते हुए मायावादियों का कहना है कि भक्ति किसी भी प्रकार की पूजा के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यदि ऐसा होता तो भक्त किसी भी देव या देव रूप की कल्पना करके उसकी पूजा करता, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि भक्ति केवल विष्णु तथा उनके अंशों की ही की जा सकती है। अतः भक्ति लता दृढ़ व्रता है, क्योंकि जब मन भक्ति में लग जाता है तो वह च्युत नहीं होता। यदि कोई अन्य साधनों से यथा कर्म योग या ज्ञान योग से आगे बढ़ना चाहता है तो वह गिर जाता है, किंतु यदि वह भक्ति में स्थिर दृढ़ है तो वह गिरता नहीं। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ होता है और दृढ़च्युत से इद्मबाह उत्पन्न होता है। इद्मबाह का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ समधा लेकर जाने वाला। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति लता मनुष्य को आध्यात्मिक पद पर स्थिर कर देती है। इस प्रकार स्थिर रहने वाला कभी नहीं गिरता और उससे जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होंगे, जैसा कि वेदों का कथन है, तद विज्ञानार्थ स गुरुमे वाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो भक्ति में दीक्षित होते हैं वैदिक शास्त्रीय आदेशों के दृढ़ पालक होते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरोस्युत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। वांछाकल्पतरभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चादेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यम प्रवयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदं मुनिमानितोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीक्ष्णं तमुन्दं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। हरे कृष्ण। अगस्त्य प्राग द्वितरम् उपयेमे धृतवृताम् यश्याम ऋणचितो जात एदम वाहात्मजो मुनि। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलध्वज की पत्नी, मलध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋणचुत था, जिससे इदम्बाहु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगस्त मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है, यह मन का द्योतक है। अगस्त मुनि ये मन का द्योतक है। अगस्त सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है, ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। यहाँ श्री रूपा जी कहते हैं कि जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह सेवा में लग जाता है। और रूपा जी उदाहरण दे रहे हैं, रूपा जी कहते हैं कि मलध्वज की जो पहली पुत्री है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थीं। मलध्वज की पहली पुत्री की आंखें कृष्ण पर लगी रहती थी अस्तिक क्षणाम। और वास्तव में जिसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती हैं उसी का जीवन सार्थक है। गोपियां कहती हैं बैंडू गीत में, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम शख्य पशुनन विवेशतोर्वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनु वेणुजुष्टं तैरवानिपीतमनुरक्तिकटाक्षमोक्षम। गोपियां कहती हैं, एक दूसरे से वर्णन करते हैं अपनी सखियों से, कहती हैं अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की सफलता इसी में समझी है, और तो हम कुछ जानती नहीं, न परम विदाम है, इससे बढ़कर नहीं जानती तो कौन सी सफलता है। तो कहते हैं हरी सखी, जब भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर श्री बलराम दोनों भाई जब गैया चरावे के लिए वन में जा रहे हों, अर्थात गैयान को चराए के वन से वापस लौट रहे हों, और उन्होंने अपने अधरों पर मुरली को धारण किए हुए हों, और सखी वो दोनों हमारी ओर तिरछी नज़र से मंद मंद मुस्कान करते हुए हमारी ओर देख रहे हों, तो हम और कुछ नहीं जानती, यही जानती हैं कि बस उनकी रूप माधुरी के हम दर्शन करती रहे। इसी में जीवन की सफलता है। तो इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं इसमें कि गोपियां आपस में कहती अरी सखी, यदि तुम सब घर के काम धंधों में फंसी रहोगी तो संसार में सबसे बड़ी सुंदर वस्तु है वो देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी वस्तु सुंदर क्या है? कृष्ण। सबसे बड़ी सुंदर वस्तु कृष्ण है, भुवन सुंदर। रुक्मणी जी कहा है श्रणताम, क्या कहा है? भुवन सुंदर कहा है, जिस लोग ध्यान से निकल रहा है कि श्रणताम गुणान भुवन सुंदर, ऐसा कुछ है कि हे भुवन सुंदर, रुक्मणी जी कहते हे भुवन सुंदर, मैंने सुना है। क्या सुना है? आपके रूप, आपके गुण, आपकी लीलाओं के बारे में सुना है। तो भुवन सुंदर कहा है और भीष्म पितामह ने कहा है त्रवन कमलम तमाल वर्णम, हे प्रभु आप तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। कैसे सुंदर हैं? बोले तमाल वर्णम, इस प्रकार तमाल का है ना, हमारे जो सामने खड़ा है राधा श्याम सुंदर सामने, बोले तमाल वर्ण का जैसा श्याम शरीर श्याम रंग है वैसा ही आपका रंग है, और उस पर बिजली के समान चमकता हुआ पीतामर बड़ा ही सुशोभित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अस्ते क्षण कि उसकी आंखें, जो मरुध्वज की पुत्री थी उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती थीं, और कृष्ण के दर्शन करना ही मानव जीवन की परम सफलता है, क्योंकि भगवान सबसे अति सुंदर है। तो गोपियां कहती हैं कि भगवान सबसे सुंदर हैं और हमारे जीवन की सार्थकता उसी में है जो हम उनकी सुंदर छवि के दर्शन करती रहें। जब वो गैया चराने जाएं तब भी हम अपने खिड़कियों से या अपने दरवाजे पर खड़े होकर उनको देखती रहें। जब गैया चरा के आएं तो गोपियां हैं एक एक क्षण युग युग के समान का बीतता था, कब वन से लौट कर के आएंगे, तब नंदनंदन श्याम सुंदर की सुंदर छवि के हम दर्शन करेंगे। अक्षण बताम फल विदम न परम विदामा, कहती हैं कि उनके दर्शन करने के बराबर इससे बढ़कर के और कोई लाभ जीवन में है ही नहीं। एक सखी बोली अरी सखी तू श्याम सुंदर की सुंदरता की बात करती है, वो तो सुंदर है ही, एक तो नंदनंदन सुंदर बहुत है ही, और दूसरे जब श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ गैया चरावे के लिए वन में जाते हैं तो एक तो मैया यशोदा इनको खूब बढ़िया श्रृंगार करें, मैया यशोदा लाला को खूब बढ़िया श्रृंगार करें, नहलावे धुलावे बढ़िया वस्त्र पहनावे फिर आभूषण धारण करावे, जैसे आप लोग अपने घर में ठाकुर जी को रखते हो बढ़िया प्रेम से नहलाते हो धुलाते हो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनाते हो, यही सबकी इच्छा रहती है बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी के हमारे वस्त्र हों, चाहे हमारे वस्त्र बढ़िया नहीं हों पर हमारे ठाकुर जी के बढ़िया वस्त्र हों, ऐसी भक्तों की भावना होती है। तो मैया यशोदा की वही भावना थी, बढ़िया से बढ़िया लाला को वस्त्र पहनाती और फिर आभूषण धारण कराती। कन्हैया खूब सुंदर तो है ही, तो भगवान के शरीर पर वस्त्र और आभूषण सुशोभित होते थे, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ाते थे बल्कि भगवान श्री कृष्ण का वो जो सुंदर शरीर है वही उनके आभूषणों की शोभा बढ़ाता था। तो सखी कहती अरे सखी एक तो नंदनंदन श्याम सुंदर है ही बहुत सुंदर, और जब वो गैया चरावे के लिए वन में जावे अपने सखाओं के साथ में तो कन्हैया की सुंदर छवि को देख करके प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि और ज्यादा श्रृंगार हम करें। फिर वन में भगवान के सखा कन्हैया को अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, किससे? बोले आम की नई नई कोपलों से, जो आम के नए नए पत्ते होते हैं नए नए कोपलें बहुत सुंदर लगती हैं, आम की नई नई कोपलों से फूलों के गुच्छों से मोर के पंखों से श्याम सुंदर को खूब सजाते थे वो अपने हाथों से, फूलों से मोर के पंखों से आम की कोपलों से कन्हैया को खूब सजाते थे। तो जब दोनों एक सुंदर हैं ही, सखियां कहती हैं मध्य बिरज तुर्लम पशुपाल गोष्ठ्याम, जब दोनों भाई तो सुंदर हैं ही और उनके सखा उनको और सुंदर बनाते थे तो पशुपाल गोष्ठ्याम, जो ग्वाल बालों की जब बीच में बैठते थे दोनों मध्य बिरज तुर्लम, जब उनके बीच में बैठते थे तो नए सुंदर लगते थे, इतने सुंदर लगते थे, गोपियां कहती हैं सखी क्या वर्णन करें, इतने सुंदर लगते थे कि बस वाणी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। थोड़ा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार रंगमंच पर जो अभिनेता अभिनय करते हैं तो खूब अपना अच्छा मेकअप करते हैं ना, तो उन्होंने वो भी दिया उदाहरण दिया है, लेकिन वो दिया उदाहरण क्या करें, कोई ना कोई उदाहरण को देना था, पर उनकी सुंदरता का वर्णन ये वाणी का विषय नहीं है। एक सखी बोली, अरे सखी वो तो बात ठीक है, पर तुम जानती हो गोप्य किम आचरद अयम कुशलम स्वेणु धाम उदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम भुंगते स्वयं यदवशिष्ट हृदय सुन्यो हृस्य त्वचो ममचुर तर्वो यथार्यः। एक गोपी बोली, हरी सखी हमारे श्याम सुंदर तो सुंदर हैं, उनकी रूप माधुरी का तो कोई कहना ही नहीं, कोई वर्णन नहीं कर सकता, पर जानती हो ये बंसी मुरली को देखती हो, ये बंसी तो हमारी सौत बनी हुई है जो हमेशा दामोदर धारा अमृत सुधाम अपि गोपिका नाम, जो हम गोपियों की अपनी संपत्ति है दामोदर का धारा अमृत, हम गोपियों की अपनी शक्ति वो अपनी जो संपत्ति है दामोदर का अधरामृत ये अकेले ही पिए जा रही है सब, और इतनी पोली पड़ी है कि सब रस को पीती जा रही है। पोली होने के कारण उस रस को ये धारण तो नहीं कर सकती, सब जगह उड़ेल रही है, सब जगह उस रस को उड़ेल रही है। पर सखी ये तो हम गोपियों की अपनी निजी संपत्ति है, पता नहीं ये हमारी सौत मुरली कहाँ से आ गई, मुरली को कोसती हैं। तो एक सखी बोली, अरे सखी हमारी श्याम सुंदर है ना, कृष्णम निरीक्ष बने तो सब रूप शीलम श्रुत्वाच तत्वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतयो स्मरणानुसारः भ्रस्यत। कहते हैं अरी सखी हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं कि संसार के लोग तो आकर्षित होते ही हैं, जब श्याम सुंदर गैया चरावे के लिए जाएं और वो अपनी मुरली को बजावें और उस समय विमानों पर देवताओं के साथ उनकी पत्नियां जब विमानों पर घूम रही होती हैं तो उनके कान में जब मुरली की ध्वनि पड़ती है तो उनकी दृष्टि उन मुरलीधर पे जाती है, क्योंकि एक तो मुरली उनके मन को आकर्षित करती है और जब उनकी दृष्टि मुरलीधर पर जाती है तो बस वो अपना होश हवास भूल जाती है। कृष्णम निरीक्ष बंतोत्सव रूपम, यानी जो कृष्ण का रूप है वो ब्रज सुंदरियों का देखने का रूप उत्सव है, यानी उनको देख करके सबसे बड़ा उनका उत्सव है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण की सुबह सुबह आप दर्शन करते हैं श्रृंगार दर्शन, तो कितने उत्साह में रहते हैं, वो भी एक उत्सव है भगवान के दर्शन करने हैं, दर्शन खोलेंगे उनके दर्शन करने हैं। तो एक सखी कहती है कि भगवान श्याम सुंदर हमारे इतने सुंदर हैं कि वो तो स्त्रियों का देखने का उत्सव है। अरे संसार की स्त्रियां तो छोड़ो, जब विमान पर देवियां घूम रही होती हैं अपने पतियों के साथ, वो भी जब उनकी वो भी उनके रूप को देखती हैं तो बस स्मरण अनुसार वो ऐसी कामातुर हो जाती हैं कि उनके वस्त्र ढीले पड़ जाते हैं, उनकी चोटी में लगे हुए जो माला पुष्प नीचे खिसक जाते हैं। अरे सखी जब स्वर्ग की देवियां तक हमारे कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं तो हम प्रेम करती हैं तो इसमें कौन सी बात है, हमारे श्याम सुंदर से सभी प्रेम करते हैं। एक सखी बोले, अरे सखी तुम जानती हो, बोले वृंदावनम सखी भवो वितनोति कीर्ति यत देवकी सुत पदाम भुजलब्ध लक्ष्म गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षा दृशानुपरितान समस्त सत्वम। एक गोपी बोली, अरे सखी तुम जानती हो हमारे श्याम सुंदर तो सुंदर हैं ही, पर श्याम सुंदर के कारण ही वृंदावन भी बहुत सुंदर बन गया है, श्याम सुंदर के कारण ये वृंदावन इतना सुंदर बन गया है कि वितनोति कीर्ति, ये पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार इतना विस्तार कर रहा है कि वैकुंठ की शोभा भी इसके सामने तुच्छ पड़ गई है। वृंदावनम सखी भवो वितनोति कीर्ति, क्यों? बोले यत देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्म, क्योंकि देवकी नंदन श्री कृष्ण के चरणों से चिन्हित होकर के सुशोभित जो हो रहा है। और सखी जब वो गोविंद अपनी मुरली को बजाते हैं गैया चराते हुए, तो उनकी मुरली की धुनी को जब मोर सुनते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और उनकी मुरली की धुनी तान में तान मिला करके ऐसा नृत्य करते हैं कहीं ताल से बेताल न हो जाएं, कहीं सुर से बेसुर न हो जाएं, बड़ा ही सुंदर नृत्य करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मोर भगवान से कहते हैं श्याम सुंदर नंदनंदन अपनी मुरली को बजाओ ना और हमको नचाओ। मोर कहते हैं अपनी मुरली को बजाओ और हमें नचाओ। तो श्याम सुंदर खूब बढ़िया मुरली बजाते हैं, जब मुरली बजाते हैं तो मोर बड़े सुंदर नृत्य करते हैं। जब नृत्य करते हैं बीच में श्याम सुंदर होते हैं तो श्रीमान जी वो भी ठुमका लगाने लगते हैं, वो भी नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मोर उनके नाच को देख करके लज्जित हो जाता है। अरे ये तो हमसे बढ़िया नाच रहे हैं। मोर बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके पास उपहार देने के लिए और तो कुछ वस्तु होती नहीं, वो अपने जो मोर पंख हैं वही भगवान को भेंट अर्पित करते हैं। नंदनंदन श्याम सुंदर हमारी ओर से यही उपहार आप स्वीकार करो। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम के साथ उनके उपहार को स्वीकार करते हैं और अपने मस्तक से अपनी पगड़ी से मोर पंखों को लगा लेते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर इतनी सुंदर मुरली बजाते हैं मधुर, उस मुरली को सुनकर मोर तो नृत्य करते ही हैं, और पहाड़ों पर पर्वतों पर जो पशु पक्षी इत्यादि होते हैं वो उनकी सुंदर नृत्य को मोर और कृष्ण के नृत्य को मोर को देख करके सब चित्रलेखे से खड़े हो जाते हैं, न कोई हिलता है न कोई डुलता है। वो भी भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का ऐसा आस्वादन करते हैं कि उन्हें अपने शरीर का होश आभास ही नहीं रहता, न कोई हिलता है न कोई ढुलता है। ये भगवान की रूप माधुरी। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामा, इससे बढ़कर के और कोई लाभ है ही नहीं। एक सखी बोले अरे सखी तुम मुरन की बात करो। प्रायो वताम व्यहगा मुनयो वनेस्मिन कृष्णेक्षितम तवितम कलवेणु गीतम। कहती हरी सखी तुम मोरन की बात करती हो, तुम जानती हो इस वृंदावन की महिमा, इस वृंदावन में कोई भी जीव साधारण नहीं है, भगवान की बड़ी विशेष 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 कृपा होती है, वही ब्रज वृंदावन धाम में निवास करता है। अब चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे कीड़ा मकोड़ा कोई भी क्यों हो कोई भी जीव हो वो साधारण नहीं है। तो कहती है प्रायो बताम बिहगा मुनयो वनेस्मिन, अरे सखी तुम वृंदावन में जिन पक्षियों को देख रही हो ना, पक्षियों को, उन पक्षियों को पक्षी मत कहना, पक्षी कहना बड़ा भारी अपराध हो जाएगा, बड़ी भारी भूल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है? बोले ये तो प्राय अधिकतर सब ऋषि और मुनि ही हैं जो पक्षी के रूप में और वृंदावन धाम का ही आनंद ले रहे हैं। देखती नहीं तुम जब श्याम सुंदर गैया चरावे के लिए जा रहे होते हैं तो ये पक्षी भी वृक्षों के झुरमुट में बैठ जाते हैं, वृक्षों के झुरमुट में, और उनकी मुरली की धुनी को सुनकर के बाहर झुरमुट से देखकर झुरमुट से बैठ करके उनकी रूप माधुरी का आनंद लेते हैं। और ऐसे अपलक मानो ये तो मुनि ही हैं, मुनि की तरह अपलक हो जाते हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का कितना आनंद लेते हैं। सखी इन्हें तो पक्षी कहना बहुत भारी भूल है, ये पक्षी नहीं ये तो अधिकांश ऋषि और मुनि ही हैं। तो वृंदावन धाम में जो भी रह रहे हैं वो साधारण जीव नहीं है, उनका कोई न कोई प्रारब्ध इतना बढ़िया शुभ कर्म हुआ है जिसके फलस्वरूप ब्रज धाम का वास मिला है। एक सखी बोली अरे सखी तुम पक्षियों की बात कर रही हो, तुम देखते नहीं ये जो यमुना नदी, यमुना नदी को देखो ना कि जब श्याम सुंदर की मुरली की धुनि इनके कानों में पड़ती है यमुना के, तो इनकी जो प्रबल धारा है वो धारा बहना बंद हो जाती है और तरंगे खड़ी हो जाती है यमुना जी की, मानो तरंग रूपी भुजाओं से प्यारे श्याम सुंदर का आलिंगन करना चाहती है। क्या यमुना की धारा भी रुक जाती है, क्यों? क्योंकि सर्वभूत मनोहरा, भगवान की जो मुरली है वो सभी प्राणियों के मन को हरने वाली है। जब भगवान श्याम सुंदर मुरली बजाते थे तो मुरली की ध्वनि को, पर वो जिसको सुनाना चाहे वही सुनता है, कभी सर्वभूत मनोहरा, कभी सभी को सुनाना चाहते थे और कभी जिसको सुनाना, चाहे राधा रानी को, चाहे ललिता को, चाहे विशाखा को, चाहे इंदुलेखा को, जिसको सुनाना चाहते वही सुन पाता। और कभी सर्वभूत मनोहरम, सभी प्राणियों के मन को हरने वाली बंसी बजाती थी। तो ऐसी उनकी मुरली की ध्वनि इतनी मधुर होती थी कि सर्वभूत मनोहरा, क्या जड़ क्या चेतन, सबके मन को हरण कर लेती थी मुरली। यहाँ तक कि चल, जो चल हैं वो अचल हो जाते थे और जो अचल हैं वो चलने लगते थे। जैसे नदियों की धारा चलती है ना, वो रुक जाती थी, अचल हो जाती थी वो। पर्वत अचल हैं, पर्वत अचल हैं, और जब नंदनंदन श्याम सुंदर की मुरली की धुनि उनके कान में आती तो पर्वत पिघल करके चलने लगती थी। सर्वभूत मनोहरम, आपने देखा होगा जिसने ब्रज मंडल परिक्रमा की होगी 84 कोस की, और नरहरि प्रभु करके आए भी, तो चरण पहाड़ी पर जाते हैं, कामवन से आएंगे, चरण कामवन को आएंगे, चरण पहाड़ी पड़ती है, तो चरण पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण की, बलराम के, गैयन की, वछड़न की, सबन की पैर बने हुए हैं, है ना, सबके आज भी उनके पैर चिन्ह बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान मुरली को बजाते थे तो पर्वत पिघल करके बहने लगते थे, तो उस समय उनके सब चरण चिन्ह बन जाते थे। और पत्थर की लकीर ऐसी होती है धोने से कभी साफ होती नहीं, आज भी भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं, कई जगह बने हुए हैं। तो सर्वभूत मनोरम, जो चलते वो अचल हो जाते थे और जो अचल थे वो चलने लगते थे, ऐसी नंदनंदन श्याम सुंदर की मुरली थी। तो गोपियां कहती हैं अरी सखी हो, ये यमुना तक भी रुक जाती है, इसकी धारा रुक जाती है और तरंगें खड़ी होती हैं, मानो श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करना चाह रही हो क्या। एक सखी बोली, अरी सखी तुम यमुना की बात कर रही हो, देखो न हमारी गैयन के लिए। बोले गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूषमुत्थित कर्ण पुटे पिबंती, सावाश्नुत स्तन पय कवला स्मत स्थुर, गोविंदम आत्मनींद्र शास्त्र कला स्प्रसंती। तब तक दूसरी सखी बोल पड़ी, अरे सखी तुम यमुना की बात कर रही हो, पक्षिणी की बात कर रही हो, अरे तुम देखो ना किसके लिए, हमारी गैया बछड़न के लिए। ये हमारी गैया भी नंदनंदन श्याम सुंदर सो कितनों प्रेम करती हैं। जब गैया चरा रहे होते हैं श्याम सुंदर, और गैया चराते चराते उनकी मुरली बजाने की धुनी आ जाती है, जब मुरली बजाते हैं और गैयन के कान में मुरली की मधुर ध्वनि जाती है तो घास चरना बंद कर देती हैं, चाहे कितनी बढ़िया घास चर रही हो एकदम बंद कर देती हैं और दोनों कान खड़े कर देती हैं, ऐसे खड़े कर देती है मानो कान रूपी दोनों से उस वेणु माधुरी वेणु रस को उसका पान करेंगी, कान रूपी दोनों से दोनों खान खड़े कर देती हैं और घास चरना भूल जाती हैं। घास का तिनका जो उनके मुंह में होता है ना अंदर निकल पाती हैं ना बाहर छोड़ पाती हैं, ऐसी उनकी दशा हो जाती है। और उनके बछड़े, अरे सखी बछड़ों का तो बस कहना ही क्या है, उनके बछड़ों की तो निराली गत हो जाती है। जब बछड़े अपनी मैया का दूध पी रहे होते हैं गैयन को दूध, और उस समय उनके कान में मुरली की ध्वनि पहुंच जाए तो दूध के घूंट को न तो उगल पाते और न निगल पाते हैं, उनकी ऐसी दशा हो जाती है। और वो भी भगवान श्याम सुंदर की रूप माधुरी का ऐसा रसपान करते हैं कि उनकी रूप माधुरी को देखते 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 उनके मन में भी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम इतना प्रेम जागृत हो जाता है कि उनके प्रेम के आंसू आंखों से बहने लगते हैं। तुम देखती नहीं इन बछड़ों की क्या गति हो जाती है। हमारे श्याम सुंदर ही इतने सुंदर, जो भी देखते हैं जो है वही आकर्षित हो जाते हैं। नाम ही कृष्ण है, सर्व आकर्षण कृष्ण। तब तक दूसरी सखी बोली, अरे सखी तुम गैया बछड़ों की बात करती हो, अरे तुम देखो ना जो वन में हिरणी रहती हैं। धन्या स्म मूल मत योपि हरणी एता यह नंद नंदन उपात विचित्र गीतम आकर्ण वेणुरड़ितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम। कहती आरी सखी तुम नदी की और गैयन की बात करती हो, तुम जंगल की ये हिरणी उनको देखो ना। ये श्लोक बड़ा सुंदर चेतन चरितामृत में बड़ा सुंदर आया है। चेतन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे तो उन्हें हिरण जब दिख जाते, हिरण दिख जाते हैं तो चेतन महाप्रभु हिरण को देख करके एकदम आंखों से आंसू धारा बहन लगती है। आहा वो ही श्लोक आ जाता है गोपियों का, धन्याय स्म मूल मतयो हरणी एता। अरे धन्य है ये मूल बुद्धि वाली हरणी भी जो भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन की सुंदर छवि का ऐसा दर्शन करती हैं, ऐसा दर्शन करती हैं मानो अपने कमल सरीखे नेत्रों को, बड़े बड़े नेत्रों कमल सरीखे नेत्रों को नंद नंदन श्याम सुंदर के चरणों में उपहार अर्पित कर देती हैं, मानो वही भगवान को पुष्प चढ़ा रही हैं, अपने कमल रूपी नेत्रों को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर देती हैं, मानो ये इसी तरह भगवान की पूजा कर रही हैं। धन्य है ये जंगल की हिरणियाँ भी, कितनों प्रेम करें नंद नंदन श्याम सुंदर से। तो चेतन महाप्रभु इस श्लोक को बोलते बोलते एकदम बेहोश, प्रेम में विभोर हो जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। ना सुंदर श्लोक, हिरणियाँ भी जंगल की भगवान श्याम सुंदर की छवि को रूप को देख करके उनकी रूप माधुरी से ऐसी प्रेम में विभोर हो जाती हैं कि बस, यद्यपि उनके पति उनके साथ में होते हैं पर उनकी कोई परवाह नहीं और उनके पति भी उनसे कुछ नहीं मना करते, पर सखी हमारे घर वाले पता नहीं क्या बात है हमसे ऐसे कूड़ते हैं कि जब हम श्याम सुंदर से प्रेम करें तो हम पर बड़ा प्रतिबंध। लेकिन धन्य है ये जंगल की हिरणियां, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये बड़ी भाग्यशाली है। तो इस तरह से दूसरी सखी बोली, अरे सखी तो हिरणी की बात कर रही हो, अरे जंगल में जो भील रहती है भीलनी वो भी कितनी भाग्यशाली है। जब श्याम सुंदर गैया चरावे के लिए जा रहे हों और बस उनकी मुरली की धुनी को सुन करके जंगल में रहने वाली भीलनी भी और बस दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास चली जाती हैं, कृष्ण के पास दूर खड़ी हो जाती हैं, जब श्याम सुंदर निकल जाते हैं तो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में जो गोपियों का कुमकुम लगा होता है वो कुमकुम घास पर लग जाता है, तो भिलनी उस घास से कुमकुम को उठा करके अपने हृदय से वक्षस्थल से लगाती हैं और वो भी अपनी काम पीड़ा को शांत करती हैं। श्याम सुंदर से कितना प्रेम भिलनी भी करती हैं। हरी सखी श्याम सुंदर हमारे हैं ही ऐसे कि प्रत्येक प्राणी उनसे प्रेम करता है। तब तक दूसरी सखी बोली, हरी सखी ये तुम पृथ्वी के लोकन की बात कर रही हो, ये तो सब पृथ्वी की वस्तु है ना, आकाश को देखो, आकाश भी नंदनंदन श्याम सुंदर से कितना प्रेम करता है। जब श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ गैया चला रहे हो और जब धूप पड़ रही होती है तो आकाश भी सोचता है अरे देखो कितनी धूप हो रही है, अभी श्याम सुंदर के ऊपर छाता ताने तो आकाश अपने शरीर का ही छाता तान देता है श्याम सुंदर पर, अपने शरीर का ही छाता तान देता है और ऐसा छाता तानता है, छाता तान करके इतना प्रसन्न होता है कि नंद नंदन श्याम सुंदर पर फूलों की वर्षा करता है। फूलों कौन सी फूलों की, बोल नन्नी नन्नी जल की श्वेत फूलों श्वेत बूंदों की वर्षा करता है, मानो सफेद सफेद फूलों की वर्षा कर रहा हो। बादल भी कितना नंद नंदन श्याम सुंदर से प्रेम करता है। तब तक दूसरी सखी बोली, सखी तुम देखते हो गिरिराज जी को, हंतायम अद्रिय बला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयो तयोर्यत पानीय सूयव सकंदर कंद मूलई। तब तक अन्य सखी बोल उठी, हरी सखी गिरिराज जी को देखो, गिरिराज जी कितने भाग्यशाली हैं, हरदास वरियो हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ गिरिराज जी ही हैं। यद्यपि गिरिराज जी साक्षात स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, और यहाँ हरदास वरियो कह रही हैं गोपियाँ हैं कि हर के जो भगवान के जो दास हैं सबसे श्रेष्ठ दास ये गिरिराज जी हैं, जो कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं कि उनकी सेवा के लिए, और फिर प्रसन्न बहुत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों से चिन्हित होकर के ये इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न रहते हैं कि इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं है। और भगवान की कितनी सेवा करते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके मित्र, उनके सखाओं की सेवा के लिए कंद मूल फल देते हैं खाने के लिए, आराम करने के लिए कंदराओं में है ना, आराम कंदराएं हैं, पीने के लिए बड़ा स्वच्छ झरनों का जल देते हैं, कितनी सेवा करते हैं नंद नंदन श्याम सुंदर की। अरे हमसे तो इनका ही जीवन धन्य है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की सुंदरता, इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अस्ते क्षणम जो मरुध्वज की पहली पुत्री थी वो हमेशा अपनी आँखें कृष्ण पर लगाए रहती थी। तो इसमें तात्पर्य में तो बहुत काफ़ी कई बोलने को है, समय हो गया, हम समय पे क्लास बंद करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आज आपने कृष्ण बलराम के दर्शन किए होंगे है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे रंग की ड्रेस है कौन बताएंगे, हाथ उठाओ, ये बताइए, थोड़ी सी गुलाबी सी ना, थोड़ी सी गुलाबी सी, हाँ बहुत धैर्य, देखो आपने बड़े प्रेम से दर्शन किए हैं। अरे भाई भगवान के दर्शन करते करते उनके दर्शन को अपने हृदय में बिठा लो तो दर्शन करना होता है, नहीं तो खाली आईज एक्सरसाइज सिर्फ बाजी कहते हैं ना, खाली आंखों की कसरत से क्या लाभ। भगवान के दर्शन ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो कि शाम तक वो छवि हमारे हृदय से निकले ही नहीं। तभी तो श्री प्रभुपाद जी ने कितनी बढ़िया व्यवस्था करी है कि सभी जगह हमारे इस्कॉन के मंदिर में भगवान का कितना बढ़िया श्रृंगार होता है, कितना बढ़िया श्रृंगार होता है, किस लिए, भक्तों के मन को आकर्षित करने के लिए। भगवान की सुंदरता ऐसी है कि बस मन को आकर्षित करती है। ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो कि दर्शन करते 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 बस उनको अपने हृदय में ही, हृदय में विराजमान कर लो कि ऐसी ड्रेस है, ऐसी मुक्ति लिए हुए हैं, आज भगवान लकुटी पकड़े, लकुटी है ना, कृष्ण बलराम के हाथ में दोनों के हाथ में लकुटी वो लगी हुई लकुटी, बेंत समझते हैं, बेंत दोनों के दोनों पर बेंत है आज। तो भगवान की सुंदर छवि का दर्शन, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, ये बहुत परम कल्याणकारी हैं। रूप गुण लीलाएं, उनका नाम तो है ही है। ठीक है, हम यहीं कथा को विराम देते हैं, समय तो नहीं है। हरे कृष्णा।